તારીખ 2/2/1993 પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા ભાવનગરમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 9.
મને કોઈ તારા મળતા નથી અને એમને છેલ્લા 500 વર્ષમાં જોયા નથી. પછી શું કરવું? તો ન મળે તો ન મળે. શાક લેવા જાવ બજારમાં અને શાક સારું ન મળે અને સડેલું મળતું હોય તો શું કરવું? લોકો સારું શાક મળતું નથી, સડેલું મળે છે. સારું ન મળે તો સડેલું લેવું કે ન લેવું, એ કઈ પ્રશ્ન કરવા જેવા છે? ન જ લેવાય, સીધી વાત છે. શાક વગર ચલાવવું સારું, પણ કઈ સડેલું શાક લેવાય નહીં, ખવાય નહીં, કઈ સીધી વાત છે કે નહીં? એવી વાત છે. ચિદાનંદ રાજા કર્મકંદરામાં છુપાયેલા છે. કંદરા એટલે ગુફા, કર્મરૂપી ગુફામાં છુપાયેલો છે એટલે આવરણ છે. અને કર્મકંદરા ત્રણ છે, ત્રણ પ્રકારની ગુફા છે. તેની શરીરાદી નોકર્મ ગુફા, બીજી જ્ઞાનાવરણાદી દ્રવકર્મ ગુફા, અને ત્રીજી રાગદ્વેષાદી ભાવકર્મ ગુફા. ત્રણ પૂતગળમય છે. શું? એટલે ભાવકર્મને પણ પૂતગળમય લેવું. તેમાં નવકર્મ ગુફામાં પરિણતિ પછી, પરિણતિ પછી એટલે જ્ઞાનની જિજ્ઞાસા લઈ ગયા. ખોજ કરનારું જ્ઞાન, સ્વરૂપની ખોજ કરનારા જ્ઞાનને અહીંયા પરિણતિ કહી છે. દાખલ થઈ રાજાને પોતાના રાજાને ગોતવા લાગી કે આમાં ચૈતન્ય રાજા ક્યાં છે, ત્યાં તેને કાંઈ ન દેખાયું. ખરું, આખા શરીરમાં કાંઈ ચૈતન્ય પણ ન દેખાયું, ત્યાં તેને કાંઈ ન દેખાયું. ચકરાવો થઈ રહ્યો, ફરી નથી ફરવા લાગ્યો. ત્યારે શ્રી ગુરુએ પૂછ્યું, કહ્યું તો પૂછ્યું શું શોધે છે? ત્યારે પરિણતિએ કહ્યું કે મારા રાજાને શોધું છું. પણ તે ન જીડ્યા. શું છે કે શરીર હાલે ચાલે છે, શરીર હાલે ચાલે છે છતાં એનામાં ચેતન નથી. હાલે ચાલે છે માટે ચેતન છે, શરીર ચૈતન્યમય છે એમ તો નથી કાંઈ. કોઈ પરમાણુમાં ચેતન છે કે કોઈ પરમાણુમાં ચેતન નથી? શરીરમાં પોતાપણું લાગે છે એ ભ્રમ છે. એનો અર્થ કે પોતાપણું લાગે છે એ ભ્રમ છે, જીવનો એ ભ્રમ છે. ત્યારે શ્રી ગુરુએ કહ્યું કે તારો રાજા અહીં જ છે, હું ગોતવા આવ્યો છું. આ જગ્યા ક્ષેત્ર તો આ જ છે, બીજું નથી કઈ. હું પાછો ફરતો પછી બીજો ગોતવા જતો નહીં. જે જગ્યાએ સરળ છે ત્યાં તારો રાજા છે, એથી બીજા ક્ષેત્ર તું ગોતવા જઈશ નહીં. હિન્દી લઉં છું ને, તો ગુજરાતી છું છે, મારો હિન્દુ છે મારો ફલે. વાપિસ મત લખના, યહાં સે તીસરી ગુફા હૈ, તબ બનતી ગુરુ પરંતુ નહીં મિલે. તબ શ્રી ગુરુ ને કહા તેરા રાજા યહાં હૈ, યહાં સે તીસરી ગુફા હૈ, વહાં તેરા રાજા બસતા હૈ. તો ભાવ કર્મ લીધો, ભાવ કર્મ લીધો તીસરી ગુફા મેં, ભાવ કર્મ. उसके राजा के हाथ की दूरी इस गुफा तक आई है, राजा के हाथ की दूरी है वो इस गुफा तक मेरे शरीर तक पहुंचे है। शरीर में हलन चलन क्यों है, आप से देखा जाता है, यहाँ से सुना जाता है, तो वहां तक वो उसकी पहुंच है, इसका मतलब यह कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए ऐसा लगता है कि वहां चेतना है, वास्तव में वहां चेतना नहीं है। यदि तो गुरु अपने आप में मिले के चैतन्य न हो मजबूत ही जाता, पता नहीं मिले हलन चलन न कर, इसलिए नियमित नियमित संबंध चाले थे। इसलिए विचार करके इस शक्ति अथवा देरी का अनुकरण करके चले जा, जो त्याथी त्याँ अस्तित्व है स्वीकार कर लेगा, यहाँ अस्तित्व है, कर्म में उसकी क्रिया देख, कर्म में कार्य में उसकी क्रिया देख के देरी को कौन हिलाता है, जो प्रेरणा करे वे चेतन प्रेरणा, तो इंद्रिय मन प्राण के बल से काम करेंगे, आत्म सिद्धि मानी जो नियमित नियमित संबंध है। द्रव कर्म गुफा के अंदर प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग ऐसे नाम उसके निमित्त से ही पड़े हैं, मेरा जीवन परिणाम इन्हीं प्रमाण स्थिति अनुभाग प्रकृति प्रदेश पुद्गल मापन यही कारण है, उसका निमित्त से नाम है। क्रोध करता है तो जो कर्म बंद पड़ता है उसको क्रोध क्रोध की प्रकृति कहते हैं, मान करता है जो प्रकृति बनती है उसको मान कहते हैं, ऐसे उसकी राजा की प्रगति जैसी जैसी ही वैसी वैसी वर्णा बंद बंदी, वहां भी उसकी राजा की बनी हुई सत्ता से निमित्त है ब्रह्म कर्म का नाम पड़ा। लेकिन चेतन प्रेरणा कौन ग्रह तो कर्म, लेकिन मर्म विचार करना मर्म मर्म मेरी निमित्त निमित्त संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है, तो उसके भाव से भाव के निमित्त से पुद्गल विविध कर्म को नाम प्राप्त हुए। भाव कर्म गुफा में राग विष मोह के प्रकाश में छिपा हुआ स्वरूप रहता है, और भाव कर्म में तो छुपा ही लौटे हम कैसे नहीं तत्व ना छिपी हुई चैतन्य ज्योति आत्म ज्योति, क्योंकि भाव कर्म तो चेतन विकार है, तो चेतन विकार में चेतन तो सही है, उतना जो चैतन्य है विकार को बात करो तो चैतन्य है वहां अज्ञान चेतना, अज्ञान चेतना दिव्य में चेतना सामान्य है, ऐसे तो सामान्य से वहां तो पता लगता है सामान्य है वो आत्मस्वरूप है। ये वह प्रकाश तेरे नाथ का अशुद्ध स्वांग है, ये जो राग द्वेष मोह का प्रकाश है तो तेरा नाथ का अशुद्ध स्वांग है, लेकिन नाथ तो है ना, फिर उसका स्वांग हुआ, नाथ ही नहीं होने का स्वांग कहां से हुआ, उसमें तू खोज डर मत निशंक जा, उसकी शंका छोड़ दे और इस राग द्वेष मोह की देरी के साथ जाकर खोज कि जिस प्रदेश से उठे वह तेरा नाथ है, उसका क्षेत्र एक ही है, जिस क्षेत्र में राग द्वेष मोह होता है वही क्षेत्र आत्मा का है, दूसरा क्षेत्र में राग द्वेष मोह नहीं होता है। तेरा नाथ वीर ज्ञान महिमा को छिपा कर बैठा है, उसे तो पहचान, वो सबसे पहले क्या लिया पहचान, उसकी पहचान कर, पहले परिचय करके उसकी पहचान कर। शिव के ज्ञान स्वरूप आत्मा ने रखो एम कैसे, आखिर में ज्ञान स्वरूप आत्मा को पहचान करना, तो उसका निर्भय स्वरूप कैसा है, शुद्ध स्वरूप निर्भय मैंने शुद्ध स्वरूप कैसा है, उसको शुद्ध स्वरूप का पहचान कर। યોગ ગુપ્ત જ્ઞાન હોને પર તેરા નાથ છુપા હુઆ નહીં રહેગા, મને પહેચાન કરને સે ફિર છુપા હુઆ નહીં રહેગા. હા ગુપ્ત જ્ઞાન, કોઈ વસ્તુ ગુપ્ત હે તો ઉસકા જ્ઞાન કો ભી ગુપ્ત જ્ઞાન કહા. જી કેવી રીતે આ લોકોને ઉદરી લાગે છે ને? હા ઠીક છે, નિમિત નિમિત દીક્ષો બંધે. હા ઠીક છે, બેસે છે દાખલો. કૃષ્ણ તમે જનસે મળે છે ને એટલે બેસે બેસે છે. પહેચાન કરને કા પ્રયાસ કરને સે ઉસકી પહેચાન અવશ્ય હોતી હી હૈ, યે કહેને કા અભિપ્રાય હૈ. જો પહેચાન કરને કા પ્રયાસ નહીં કરતા હૈ ઉસકો પહેચાન નહીં હોતી હૈ, લેકિન પહેચાન કરને કા ખોજ કરતા હૈ ઉસકો તો પહેચાન હોતી હૈ. ખોજી જીવે વાદી મરે, વાદી વાદ કરને વાલે કો ખોજ નહીં હૈ, પણ જીસકો ખોજ કરને પડા હૈ વો વાદ વાદ મે જાયેગા નહીં. સીધી વાત હૈ. વહાં તું ચેતના પ્રકાશ રૂપ ચિદાનંદ રાજા કો પ્રાપ્ત કરકે સુખી હોગી. ચેતના પ્રકાશ જિસકા હૈ એસા ચૈતન્ય મહારાજા હૈ उससे तुझे सुख मिलेगा, सुख बंदा रहे हो अनिल सुख का बंदा रहे, यहाँ से सुख मिलेगा मिलेगा. यह तुझे मैंने निज सुख का उपाय बतलाया है, यह निज सुख तो निज उपयोग में कहा है. देखो वहां ले आया फिर विधि ले गए ना, निज सुख है वो निज उपयोग में है, तो ज्ञान है वो सुख स्वरूप ही है. यहां से उसका पहचान होता है, पता मिलता है. शोधानो शोधन शोधानो क्रम बताओ पहले थी कि सर्वलौकिक रीति थी परम मुख था अंतर खोज करे तो इतनी विचारणा थे उसको समुद्र में सुविचारणा जो प्रगटे सुविचारणा तो प्रगटे निविज्ञान सुविचारणा से सुविचारणा नो एक भाग छे ये अंतर खोज छे के जेने अंतर खोज प्रगट थाय एने ज्ञानी गुरु ना वचनो छे ए एने सुहाय सुहाय के एने बैसे માનીના વચનો અંતર ખોજવાળાને તરત બેસે. કેમ કે એ ખોજતો તો એને ચીજ સામે આવી, માટે એને તરત બેસે છે. જેને ખોજ નથી એને દરકાર નથી, દરકાર નથી એટલે એને સામે શું ચીજ આવે છે એની ખબર પણ પડતી નથી. એટલે જે ખોજ છે એમાં જિજ્ઞાસા વૃત્તિ છે. जिज्ञासा वृत्ति में सत्य को स्वीकार करने का एक अवकाश है, खाली जगह जिसको कहते हैं अवकाश. सत्य को स्थापन करने का, स्वीकार करने का एक अवकाश रहता है. वो अवकाश हुए बिना सत्य सामने आवे तो भी स्वीकार करने का तो अवकाश नहीं है. तो उनको सही बात मिलने पर भी उसको ग्रहण नहीं होती, और ग्रहण नहीं होती इसका यही कारण है कि उसको खोज में आना चाहिए, वो खोज में
नहीं आया.
खोज पूर्वक स्वीकार होना चाहिए, खोज पूर्वक स्वीकार होना चाहिए. शोभ समय स्वीकार करे, लेकिन जो पूर्वग्रह है उल्टा स्वीकार है वो तो गया नहीं. और खोज का मतलब क्या है कि मेरी अभी तक की जो बात है वो ठीक नहीं है, मुझे सत्य चाहिए. तो जो पूर्वग्रह उसको निकाल करके खुश करेगा, वहां तो खाली जगह नहीं है, अगर वहां खाली जगह है अंतर तो दो बात का है कि नहीं ऐसा। दोनों भाग पूर्व की जो समझ है जिसको उल्टा संस्कार कहते हैं, क्या वो उल्टा संस्कार हटे नहीं या कमजोर पड़े नहीं तो सत्य का संस्कार कहां से होगा, रहेगा कहां? वो ये खोज में जिज्ञासा के काल में वो अवकाश होता है सत्य को स्थान प्राप्त करने का। सबसे बड़ी बात यह है जिज्ञासा होनी चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं समझता, यहां से शुरू करना चाहिए तो सत्य समझ में आवे। मैं भी समझता हूं तो सत्य समझ में नहीं आएगा। वो तो आत्महित तो करना है, परम कल्याण तो कर रही है, वरना इस क्षेत्र में क्यों आ गए? दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है, इस क्षेत्र में क्यों आए? वो अपना आत्म कल्याण नहीं करना हो तो इस क्षेत्र में आया क्यों? ये बात है। अन्य हेतु से आया तो ये तो गलत हेतु हो गया, उससे तो कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। तो बोले तो हेतु तो अपना पूरा का पूरा साफ करना है, समझना है। इसलिए वो भी अपना अवलोकन किए बिना अपना हेतु कौन पकड़ेगा? हम किस हेतु से ये धार्मिक प्रवृत्ति कर रहे हैं ये बात हम जानेंगे कि कब के हम हमारा अवलोकन करेंगे तब, वरना तो हम भूखे रहेंगे। वंचना बुद्धि से प्रवृत्ति करेंगे ये बात हो जाएगी। नहीं देखे तो कैसे पता चलेगा? अनादि से जैसे जीव उल्टा संस्कार से घृणित है वैसे ही अनादि से जीव स्वच्छंद से भी घृणित है। तो दूसरे दूसरे दोस्तों इससे कम है, सबसे कोई बड़ा दोष है तो स्वच्छंद है। और वो स्वच्छंद जाने का दो उपाय है, एक बाह्य उपाय है वो निमित्त प्रधान है और एक अंतरंग उपाय है वो उपादान प्रधान है। यद्यपि निमित्त प्रधानता में भी उपादान की तो बात साथ में रहती ही है, क्योंकि तो अपना काम तो उपादान से होगा। तो जो उपादान प्रधान बात है उसमें तो यह है कि अपना अवलोकन नहीं होए और अपक्षपात रूप से अपना दोष को नहीं देखे, उनको स्वच्छंद जाने का कोई अवकाश नहीं है, उसका स्वच्छंद नहीं जाएगा। भगवान की भक्ति करे, गुरु की भक्ति करे, शास्त्र भक्ति करे, लेकिन वो भक्ति स्वच्छंद निरोध रूप नहीं होगी। दूसरे दूसरे क्रिया में तो अहम भाव बहुत रहता है, जैसे कि कोई बाह्य क्रिया करता है जब तक आदि तो इसमें तो अहम भाव आएगा, ज्ञान क्रिया करेगा तो उसमें अपना सूक्ष्म का अहम भाव आएगा, लेकिन भक्ति में तो नम्रता होती है। फिर भी भक्ति स्वच्छंद निरोध रूप हो तभी सही भक्ति कही जाती है। पर स्वच्छंद निरोध रूप भक्ति कैसे होती है कि उसका स्वरूप पहचाने, वीर गुरु शास्त्र सत्पुरुष का स्वरूप पहचाने तब, और अपना परिणाम में दोष को अवलोकन करे तब। तो अपना अवलोकन करना वो उपादान प्रधान है, और देव गुरु शास्त्र का स्वरूप पहचान कर सर्वार्पण बुद्धि होना वो निमित्त प्रधान है। लेकिन वो पहचान करना वो उपादान का कार्य है, और सर्वार्पण बुद्धि होना वो भी उपादान का कार्य है। लेकिन उसमें एक सामने निमित्त भी होता है, अवलोकन में दूसरा कोई निमित्त नहीं है, केवल उपादान का वो प्रयोग है। तो दो प्रकार से स्वच्छंद की हानि होती है, स्वच्छंद का नाश होता है। और स्वच्छंद सभी जीव को अनादेश है, सभी अज्ञानी जीव को अनादेश स्वच्छंद है ही। और सबसे कोई आत्महित में रोधक है, प्रतिबंधक है, तो ये स्वच्छंद है। दूसरे दोष तो गौण है इसके पास, ये महादोष है। इसलिए वैष्णव तो प्रकरण में स्वच्छंद का थोड़ा विस्तार ज्यादा कर दिया है कि किस किस प्रकार से स्वच्छंद होता है। भक्ति स्वच्छंद निरोध भक्ति का यथार्थ भक्ति का स्वरूप स्वच्छंद निरोध रूप भक्ति। क्या कहा 751 में? स्वच्छंद निरोध रूप भक्ति वो यथार्थ भक्ति है, और स्वच्छंद निरोध रूप आप्त पुरुष की भक्ति है। उसी को तो सम्यक दर्शन बोला है। क्या बोला है? सम्यक दर्शन का अनन्य कारण गिन करके उसको सम्यक दर्शन बोला है, संकेत बोला है। क्योंकि पहचान से सर्वार्पण बुद्धि आई है। कैसे? तो उसमें खतरा ज्यादा है ना। किसने? भक्ति स्वच्छंद निरोध रूप यथार्थ भक्ति है, तो फिर कहां से स्वच्छंद बढ़ेगा? नहीं तब तो होगा, लेकिन यहाँ तो वो कंडीशन है। भक्ति का यथार्थ स्वरूप स्वच्छंद निरोध रूप होता है, वरना तो भक्ति सही है ही नहीं। तो भक्ति सही नहीं है, ऐसा है। वो खतरा तो फिर तीनों में उपस्थित हो गया। खतरा तो तीनों में है, क्रिया में, क्रिया मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, और भक्ति मार्ग, तीन मार्ग लिया। तो तीनों यथार्थ होने से तो कोई आपत्ति नहीं, तीनों यथार्थ हो तो कोई आपत्ति नहीं है, पर अयथार्थ हो तो तीनों में खतरा है। सीधी सादी बात है। तो जब तक है वो तो चारित्र का विभाग है, तो वो तो वो श्रद्धा ज्ञान के पहले आता ही नहीं। तो इसके पहले तो ज्ञान का बात रहा, और ज्ञान कब होता है? ज्ञान कब होता है कि पात्रता बिना ज्ञान होता नहीं? पात्रता बिना ज्ञान होता है क्या? निज संग से तो ज्ञान होता नहीं। मचनावली में बोलो, दो सौ में क्या कहा? मचनावली 200 आता है। અનંત કાળ તક નિર્છંદ સે જીવ ચલે ઓર પરિશ્રમ કરે તો ભી અપને આપ સે જ્ઞાન જ્ઞાન કી પ્રાપ્તિ હોવે નહીં. પરંતુ જ્ઞાની કી આજ્ઞા કા મને સ્વચ્છંદ નિરોધ ભક્તિ સે જ્ઞાની કી આજ્ઞા કા આરાધન હોતા હૈ. જ્ઞાની કી આજ્ઞા કા આરાધક અંતર્ગત મેં ભી કેવલ જ્ઞાન દે સકતા હૈ, સમય દર્શન મેં કેવલ જ્ઞાન ભી લે સકતા હૈ. એક ભક્તિ હોય ને, એક ભક્તિ ને તો સર્વાર્પણ બુદ્ધિ આવી નહીં, તો ક્યાં કરેગા ઓક સંગમાં મેં કે કહી ને કહી તો ઉલ્લંઘન કરેગા. એક નિષ્ઠા છે જો આજ્ઞા કા આરાધન કરના ઓ બાત નહીં રહેગી, કહી ને કહી તો વો અપના સ્વચ્છંદ સે ઉલ્લંઘન કર લેગા, ઓ ભક્તિ ને ઓ ક્ષતિ રહે જાયગી. જૈસે શ્રદ્ધા જ્ઞાન વિના ચારિત્ર કી પ્રાપ્તિ નહીં, વૈસે પાત્રતા વિના શ્રદ્ધા જ્ઞાન કી પ્રાપ્તિ નહીં. ઓર પાત્રતા એ સ્વચ્છંદ નિરોધ રૂપ હોય વિના આતી નહીં, એના બીજા સ્વચ્છંદ હટે વિના તો આતી નહીં. તો ઉસકા તો બે ઉપાય સ્વચ્છંદ હટાને કા, એક તો અપના નિષ્પક્ષ છે અપક્ષપાત છે અપના અવલોકન કરે, और दूसरा एक निष्ठा से सत्पुरुष की आज्ञा का आराधन करें. तो अपना अवलोकन करना वो थोड़ा कठिन है, लेकिन एक निष्ठा से आराधन ज्ञानी की आज्ञा का आराधन करना वो सुगम है. ઉસકા તો કોઈ ઇલાજ નહીં, ફિર ફિર તો કોઈ ઇલાજ નહીં હૈ ઇસકા. અપની નિષ્ઠા કો અપન નહીં સમજે તો કોણ સમજેગા. અપની જો નિષ્ઠા હૈ તો અપન અપન નહીં સમજેગા તો કોણ સમજેગા. જબ અપની નિષ્ઠા શુદ્ધ હૈ તો અંતકરણ શુદ્ધ હૈ, મતલબ અપની નિષ્ઠા શુદ્ધ નહીં હૈ તો અંતકરણ શુદ્ધ નહીં હૈ, બાકી સીધી વાત હૈ. તો અપના અંતકરણ કો કોણ દેખેગા, કોણ તલાશ કરેગા, દૂસરા કોઈ કર સકતા હૈ ક્યા? હમારે અંતકરણ મેં ક્યા બાત રહી કોણ જાનેગા, વો તો હમ જાન સકતે, દૂસરા કૈસે જાનેગા. દૂસરા બતાતા હૈ ઓર ખ્યાલ આવે, પર અપન અપના શુદ્ધ અંતકરણ કો નહીં જાંચ કરે, એસા ક્યો? इसके पहले हमने क्यों हमारा अंतकरण की जांच नहीं किया कि दूसरा बताएगा जब पता चले. दूसरा तो कोई प्रसंग बताएगा, दूसरा क्या बताएगा, बता बता करके ही क्या बताएगा. तो वो बात तो अपने को जानने को मिली, लेकिन उस दोष को निकालेंगे ऐसे, ચલો નહીં હૈ તો નહીં હૈ, નિષ્ઠા એક નિષ્ઠા નહીં હૈ, માલુમ પડ ગયા ફિર ક્યા કરેંગે. એસા માલુમ પડને સે કોઈ નિષ્ઠા આ જાતી હૈ ક્યા? વાસ્તવ મેં જાનને સે મતલબ હૈ યા એક નિષ્ઠા નહીં હૈ ઉસકો વો એક નિષ્ઠા મેં આને સે મતલબ હૈ ક્યા બાત હૈ? તો તો અંતકરણ મેં જાના હી પડેગા. तो एकमात्र इलाज हुई है कि अपने अंतकरण को जांच करना ही पड़ेगा.
अंतकरण की तलाश करते हैं और उसमें पता चलता है कि हमारा अंतकरण ही शुद्ध नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ा दोष हो गया। जब मालूम पड़ेगा कि ये तो बहुत बड़ा दोष हो गया कि हम हमारे आत्मा को भी वंचना करते हैं और देव गुरु शास्त्र सभी का भी वंचना हम करते हैं, कितना बड़ा दोष हम करते हैं, ये भी पता चल जाएगा। तो पता चलेगा तो उसका पश्चाताप होगा और वो निकलेगा। पता ही जब नहीं है तो पश्चाताप ही नहीं है, तो फिर निकलेगा सवाल, निकलने का सवाल भी नहीं है। इतनी गहराई में जाना पड़ेगा। सबका मूल अंतकरण में रहा है, इसके पहले कोई बात होने वाली नहीं है। ऐसा तो शास्त्र में जो दृष्टांत आता है द्रवलिंगी का, और 31 सागर तक जाता है, तो वहां स्थूल कथन तो ऐसा आता है शास्त्र में कि अगर वो मायाचार्य से द्रवलिंगी होता तो 31 सागर तक नहीं जा सकता। इसलिए इनके पर वर्तमान अवस्था में संतुष्ट होता है, इसका मतलब ये हुआ कि उनको अपूर्वता नहीं आई, निरावरणता नहीं आई। आवरण में जो संतुष्ट रहा है उसने अपना अपना अंतःकरण को देखा नहीं है, ये बात है। वो तो कोई नहीं थे पकड़ाते, द्रविलिंगी ने को जैसे नहीं पकड़ने में, ऐसे मुमुक्ष को भी अपनी भूल पकड़ने में नहीं आते। जानबूझ के भूल करने वाले भी होते हैं, लेकिन सब ऐसे नहीं होते हैं। जानबूझ के भूल करने वाले सब नहीं होते, कुछ होते भी है लेकिन सब ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन अपनी भूल पकड़ने में नहीं आते, ऐसे बहुत होते हैं कि अपनी भूल नहीं पकड़ने में आ रहे। तो ऐसा ही रखे कि अपन तो करते हैं, अपनी जितनी शक्ति है उतना शक्ति का समय का खर्च करके अपन स्वाध्याय करते हैं, पूजा भक्ति करते हैं, कुछ दया दान भी करते हैं, जो भी अपनी शक्ति है उसके मुताबिक तो करते हैं। तो करते हैं उसमें, करते इसका मतलब कि जो करते हैं उसमें संतुष्ट है, तो ये दर्शन को तीव्र करने वाले परिणाम है। और वो संतुष्ट इसलिए है कि वो अपना अंतकरण को देखता नहीं है, वहां तक उसकी जांच नहीं है। कोई व्यापार करेगा तो छोटी से छोटी बात का हिसाब करेगा, व्यापार करने में तो एक खिली लगाएगा पैकिंग में तो खिली का हिसाब करेगा, एक डोरी और पस्ती लगाएगा पैकिंग करने में तो उसका हिसाब लगाएगा। और इधर क्यों उतना हिसाब नहीं करता है बारीक, इससे बारीक इसका बारीक हिसाब करना चाहिए और वो अंतकरण तक पहुंचना चाहिए। आखिर में इतना तो देखे कम से कम कि तुमने भले ही अपने शक्ति अनुसार जो कुछ किया सो किया, ना नहीं करते उसका, लेकिन इससे मिला क्या, क्यों नहीं देखा। व्यापार करने में क्यों सर्वया निकलता है कि नफा हुआ कि नहीं हुआ, खरीद का टोटल इतना, बिक्री का टोटल इतना, दो टोटल में खर्चा बात करके क्या बचता है। वहां तो नफा को देखता क्या नहीं, लाभ को, यहाँ लाभ हुआ कि नहीं है उसको क्यों नहीं देखा। साल गई दो साल, वहां तो हर साल देखता है दिवाली पर, साल गई दो साल गई पांच साल गई 15 साल गई 25 साल गई 50 साल गई, क्यों नहीं देखा। तो दरकार किया नहीं, उसकी दरकार नहीं किया। तो दरकार नहीं किया इसका मतलब उपेक्षा रखे, धर्म लाभ की उपेक्षा रखे और धर्म लाभ हो, दो बात कहां से बनेगी? उपेक्षा कर ली है, उसी समय तो बहुत कालजी होना चाहिए कि इतना परिश्रम करके हमें कुछ नहीं मिलता है तो परिश्रम हमारा बेकार क्यों जाता है, कुछ न कुछ गड़बड़ी हमारे में अवश्य, उसके अंतर खोज करो। इसी का नाम सो विचारना है। ऐसी अंतर खोज करने का नाम सो विचारना है। तो आत्म विचार सन्मुख, निज विचार सन्मुख हो, यही बात है। विस्तार करे तो ये बात है, उसमें निज विचार के सन्मुख हो गए। बहुत भरा अनुभव प्रकाश में, अनुभव प्रकाश बहुत बढ़िया ग्रंथ है वो तो। क्या अनुभव पद्धति से पढ़ो, अनुभव प्रकाश ग्रंथ को अनुभव पद्धति से पढ़ो, क्योंकि अनुभव का ग्रंथ है, पढ़ने का ग्रंथ नहीं है, अनुभव कराने का ग्रंथ है, अनुभव करने का ग्रंथ है। तो अनुभव करते जाओ, अनुभव की कसौटी पर बात को रखते जाओ और पढ़ते जाओ, ऐसे नहीं पढ़ो, ऐसी बात है। इनकी शैली भी ऐसी है, खुद की जो पठन पद्धति है उसमें अनुभव प्रधानता बहुत है। अनुभव भरा है उसका जो लिखा हुआ बात में, अनुभव भरा है। अनुभव में अमृत होता है, आत्मानुभव में तो अमृत होता है। जो अनुभवी पुरुष अनुभव की बात करते हैं तो वो बात में भी अमृत भरा है, ऐसी बात है।
अनुभव करता करता
मैंने अमृत को पीते पीते लिखा है, इसलिए उसमें उसका अमृत रस आए बिना नहीं रहता, ऐसी बात। किसी को शास्त्र भक्ति कहते हैं, शास्त्र के वचन में अनुभवी पुरुष के वचन है सब। ऐसे आत्मा को संसार का नाश हो जाए और निर्वाण पद की प्राप्ति हो जाए, ऐसी बातें जिसमें भरी है, ऐसे वचन से जो भरपूर है, निजर निजर से पगे वचन है, रामचंद्र जी ने गाया है। कैसे मुनिराज के निजर से पगे वचन है, जिनके निश्चित निजर से पगे वचन है। जिनके वचन की इतनी महिमा, उनके भाव की महिमा कितनी, जिस गुरु के वचन की उतनी महिमा, उस गुरु के भाव की तो महिमा कितनी, ऐसी बात है। तो गोपाल देव को लिखे, ऐसे ज्ञानी के ज्ञान का विचार करते महानिर्जरा होती है। ऐसे ज्ञानी के ज्ञान का विचार करने से निर्जरा होती है, ऐसा क्योंकि इसका स्वरूप ज्ञान में आया ना तो दर्शन वो का अनुभव कटेगा, ऐसा लिए। वो तो खास कहते हैं कि जब तक आत्मज्ञान नहीं हुए और समूह में स्वाध्याय करने का उदय हुए मुमुक्ष जीव को, उनको ज्ञानी की ज्ञान दशा की महिमा गुणगान प्रशंसा ये ज्यादा करना है। इसका स्वाध्याय का मुख्य अंग है। क्या इसका स्वाध्याय का ये मुख्य अंग है, क्योंकि इनसे दर्शन मोह का अनुवाद करता है। कोई प्रश्न है इसमें? चर्चा में तेरा टाइम रेखो से बात है, वैसे कलकत्ता थे नहीं तर तो सवार एक वक्त मानसर रखे चर्चा रखे सवार ज्ञानी के वचनों में गहराई तो बहुत होती है। स्वाध्याय करने के वक्त उसकी जो वचन गांभीर्य है, वचन रहस्य है, वचन की गहनता है, वहां तक पहुंचने का प्रयास होना चाहिए उसी वक्त। ऐसा वक्ता को भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ तैयारी करके आवे और जो तैयारी किया है वो बोले, ऐसा नहीं। प्री प्लानिंग स्वाध्याय नहीं होना चाहिए। क्या आगे से प्लान नहीं करना है कि इस बात पर मैं इतना बोलूंगा, ऐसा बोलूंगा, इतना पॉइंट है, वो बात नहीं। उस वक्त जब वो वचन सामने हो उस वक्त उसमें कितनी गहराई है, क्या क्या गंभीरता है, कैसा कैसा रहस्य खुलता है, वो तो प्रयत्न करके निकाले, ऐसा होना चाहिए। तो शुष्कता नहीं आवे। अगर पहले से कोई सोच लिया और फिर वो बात धारणा में रख करके बोलने लगे उसमें शुष्कता आ जाएगी, क्योंकि उससे प्रयत्न नहीं होगा। रेडीमेड बात को आउट करना है, डिलीवर करना है, वो ठीक नहीं है। अपने लिए चिंतन करना वो दूसरी बात है, लेकिन कोई बात कहने के लिए विचार करना वो अच्छा नहीं है। कहने के लिए पढ़ना भी नहीं, कहने के लिए विचार करके रखना भी नहीं, उसमें कृत्रिमता होती है और शुष्कता। कृत्रिमता में शुष्कता ये बिना नहीं रहती। ये तो वक्ता के स्वरूप में बहुत बात आएगी, प्रथम अधिकार में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, और बहुत सी बातें श्रोता के अधिकार में भी उन्होंने लिया है। क्योंकि श्रोता का संबंध वक्ता के साथ है, तो कैसे वक्ता को सुनना, ऐसा करके वक्ते की योग्यता ले लिया है। वक्ता के स्वरूप में वक्ता की योग्यता का बात किया और श्रोता के स्वरूप में भी वक्ता की योग्यता का बात ज्यादा किया है, क्योंकि वक्ता को जवाबदारी जोखिम बात है उसका, कि वो बात उन्होंने ज्यादा किया है और खुद ही वक्ता है, खुद ही ग्रंथ लिख रहे हैं, इसलिए वो बात उन्होंने ज्यादा किया है और खुद श्रोता नहीं है तो उनका अनुभव भी ज्यादा है इस विषय पर, अपना अनुभव भी ज्यादा है, तो जितना भी अनुभव है वो सब लिखा है, बहुत अच्छा बात है।
जिन्वान मातनु परम कृपा।